इप्सिता ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं इट्स ओके, हम खुद से साफ कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। इतना कहकर इप्सिता वॉशरूम में चली गई और वॉश बेसिन के पास अपना फोन रखा। उसने टिश्यू पेपर उठाए और अपने कपड़ों पर गिरे जूस को साफ करने लगी। इप्सिता कपड़े साफ कर ही रही थी कि उसका मोबाइल फोन बजा। फोन की ओर देखते हुए इप्सिता बोली, नंदिनी तुम्हें भी इसी समय कॉल करना होता है जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं। इतना कहकर इप्सिता ने नंदिनी का कॉल इग्नोर कर दिया और जल्दी जल्दी अपने कपड़े साफ करने लगी। उसे पता था कि देर हो गई तो जूस का दाग पड़ जाएगा और इप्सिता नहीं चाहती थी कि उसकी अच्छी ड्रेस खराब हो जाए। पार्टी में दागदार ड्रेस पहनकर रहना काफी शर्मिंदा करने वाला होता। हर किसी को तो वो नहीं समझा सकती थी कि ड्रेस पर दाग कैसे लगा, जूस तो पार्टी में ही गिरा था। इसीलिए इप्सिता ध्यान से शीशे में देखकर कपड़े साफ कर रही थी। अभी भी वो कपड़े साफ कर रही थी कि फिर से उसका फोन बजा। इप्सिता ने कॉल पिक किया और स्पीकर पर रखते हुए कहा, यार नंदिनी तुम हमें ऐसे ही समय पर कॉल क्यों करती हो, प्लीज अभी फोन रखो, हम तुमसे बाद में बात करते हैं, पहले ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। नंदिनी ने इप्सिता की बात सुनकर परेशान होते हुए कहा, क्यों अब क्या कर लिया तुमने इप्सिता, और मुझे पता नहीं क्यों तुमसे बात करने का मन हो रहा था इसीलिए मैंने कॉल कर लिया, लेकिन तुम तो काफी परेशान लग रही हो। उसकी बात सुनकर इप्सिता चिढ़ते हुए बोली, हमने कुछ नहीं किया, पता नहीं वो कौन था, वो आदमी अनजाने में या जानबूझकर हमसे टकरा गया और हमारे हाथ में जो जूस का ग्लास था वो हमारे कपड़ों पर गिर गया। नंदिनी ने सिर पीटते हुए कहा, हे भगवान ये लड़की भी, तुमसे एक भी काम ठीक से नहीं होता है ना, इतनी प्यारी ड्रेस थी अब खराब कर ली। और जीजू कहाँ है, उन्होंने भी देख लिया ना, इप्सिता ने सफाई देते हुए कहा। सबसे पहली बात तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो शांति से खड़े थे, वो कैसे आकर हमसे टकरा गया। और दूसरी बात, अभी हम वॉशरूम में हैं, अभिमन्यु थोड़ी ना हमारे साथ अंदर आएगा, वो बाहर खड़ा है। नंदिनी ने इप्सिता को छेड़ते हुए कहा, अरे तो उन्हें अंदर बुलाओ, वो तुम्हारी हेल्प करें, थोड़ा रोमांटिक माहौल बने और तुम्हारी पार्टी यादगार बन जाए। नंदिनी के ऐसे बोलने पर इप्सिता ने जल्दी से मोबाइल का स्पीकर बंद किया और फोन कान के पास लगाते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या तुम, कहीं पर भी शुरू हो जाती हो, हमने तुमसे कहा ना वॉशरूम में है और तुम स्पीकर पर कुछ भी बोलती हो। नंदिनी इप्सिता की बात सुनकर हंसते हुए बोली, अरे तो क्या हुआ, हमने कुछ गलत थोड़ी ना बोला, और वैसे भी वो तुम्हारे फियांसे हैं, तुम्हारी हेल्प तो कर ही सकते हैं। इप्सिता चिढ़ते हुए बोली, अच्छा तुम फोन रखो और हमें ड्रेस साफ करने दो, वरना अगर इस पर जूस का दाग पड़ गया तो फिर हम इसे साफ नहीं कर पाएंगे। इप्सिता की बात सुनकर नंदिनी बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन तू मुझे ये तो बता दे, वहाँ पार्टी में सब लोग तुम्हें देखकर शॉक तो हो ही गए होंगे ना। इप्सिता नंदिनी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ऐसा ही कुछ हुआ, हम तो सोच रहे थे कि कहीं अभिमन्यु के सामने लोग हमें इग्नोर ना कर दें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, जितनी अटेंशन अभिमन्यु को नहीं मिली उससे ज्यादा हमें मिल गई। नंदिनी खुश होते हुए बोली, देखा ये सब मेरे मेकअप का कमाल है, अगर मैं ना होती तो पता नहीं तुम कैसे रेडी होती। इप्सिता ने बिना बहस के उसकी बात मानते हुए कहा, अच्छा चलो ठीक है, अब तुम फोन रखो, हमें परेशान मत करो, हम घर पहुंचकर तुमसे बात करेंगे। नंदिनी ने कहा, ठीक है बाय, एंजॉय योर पार्टी। इप्सिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, काहे की एंजॉय, पार्टी में एंजॉयमेंट नहीं हो रहा है, पता नहीं और कितनी देर हमें यहाँ वॉशरूम में लगने वाली है। नंदिनी ने कहा, अब तुम जल्दी जल्दी सब कुछ साफ करो और बाहर निकलो, वरना सारा टाइम तुम यहीं वॉशरूम में बिता दोगी। इप्सिता ने कहा, हाँ जा रहे हैं, पहले तुम कॉल डिस्कनेक्ट करो। नंदिनी ने कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए कहा, ओके बाय, और घर पहुंचकर मुझे कॉल करना। इप्सिता ने हामी भरी और कॉल काट दिया। अभिमन्यु उसके बाहर निकलने का इंतजार करते हुए वॉशरूम के बाहर खड़ा था। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला। अभिमन्यु को लगा कि शायद इप्सिता ही निकल रही है। वो दरवाजे की ओर देखते हुए बोला, हमें लगा आप थोड़ा और समय लेने वाली हैं। लेकिन अभिमन्यु इतना बोल ही रहा था कि वो चुप हो गया। उसकी नजर दरवाजे से बाहर आने वाली लड़की पर पड़ी। वो चुप होकर अपनी जगह पर रुक गया। उस लड़की ने अभिमन्यु को देखते ही गेट के पास रुककर मुस्कुराते हुए कहा, ओ माय गॉड, मिस्टर अभिमन्यु राजवंशी, कुमार साहब, होने वाले राजा, आप यहाँ वॉशरूम के बाहर क्या कर रहे हैं? अभिमन्यु थोड़ा शॉक्ड हुआ और मन में सोचा, अभी थोड़ी देर पहले तक तो ये बाहर थी, अब ये यहाँ क्या कर रही है, इतनी जल्दी वहाँ से यहाँ कैसे आ सकती है, और हमने तो इसे अंदर जाते भी नहीं देखा। अभिमन्यु सोच ही रहा था कि वो लड़की सेक्सी अंदाज में अभिमन्यु के करीब आई और उसके सामने रुकते हुए बोली, क्या हुआ, हमेशा की तरह हमारी आंखों में खो गए क्या? अभिमन्यु उसे घूरते हुए देख रहा था। वो अभिमन्यु के शॉक चेहरे को देखकर मन ही मन खुश होने लगी और अभिमन्यु के बिल्कुल करीब जाकर उसके माथे पर अपनी इंडेक्स फिंगर रखी और धीरे धीरे उसे गालों से होते हुए गर्दन तक ले आई। अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, व्हाट आर यू डूइंग अवंतिका, दूर रहिए हमसे। अवंतिका ने अभिमन्यु की बात सुनकर उसके और करीब जाते हुए कहा, क्यों आज भी मेरे इतने करीब आने से तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो जाती है क्या, आज भी इतना फर्क पड़ता है क्या तुम्हें? इतना बोलकर उसने अभिमन्यु के सीने पर अपना हाथ रख दिया। अभिमन्यु उसे ऐसा करते देखकर वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखने लगा। उसने थोड़ा घबराते हुए मन में सोचा,
अगर इप्सिता भी बाहर आ गई और उन्होंने अवंतिका को देख लिया तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? अभिमन्यु ये सोच ही रहा था कि अवंतिका ने कहा, तुम्हारे दिल की धड़कन तो अभी भी वैसे ही धड़क रही है जैसे पहले जब जब मैं तुम्हारे करीब आती थी। इसमें तो 1% का भी कोई बदलाव नहीं आया। इसका मतलब आज भी मैं तुम्हारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट हूँ, एम आई राइट? अभिमन्यु ने अवंतिका का हाथ अपने सीने से हटाते हुए कहा, जस्ट शट अप और जाओ यहाँ से। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें तो हमने अपने दिल से उसी दिन निकाल दिया था जिस दिन तुम हमें छोड़कर गई थी, इसलिए अब ऐसी कोई गलत फहमी मत रखना। अभिमन्यु ने काफी गुस्से में ये बात कही। अवंतिका उसे इतने गुस्से में देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ओ रियली, दिल से तो तुमने निकाल दिया लेकिन क्या दिमाग से निकाल पाए हो मुझे? इतना बोलकर वो अभिमन्यु के और करीब चली गई और अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोली, लेट मी सी, तुम्हारी आंखों में तो मुझे आज भी उतना ही प्यार और जुनून नजर आ रहा है जितना पहले। तुम आज भी मुझे भूल नहीं पाए हो, चाहे तुम इस बात को जितना भी छुटलाओ लेकिन सच से भाग नहीं सकते हो अभिमन्यु। अभिमन्यु ने अवंतिका के कंधे पर हाथ रखे और उसे धीरे से खुद से दूर करते हुए कहा, तुम्हें अगर ऐसा ही कुछ सोचना है तो सोचती रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, न ही तुम्हारी इन बातों से और न ही तुम्हारे यहाँ होने से। और वैसे भी हम तुम्हें साफ साफ ये बात बता देते हैं कि हम यहाँ किसी का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले कि वो यहाँ वापस आए, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अवंतिका अभिमन्यु की बात सुनकर उसके चेहरे के बिल्कुल करीब जाते हुए बोली, ओ रियली, आखिर ऐसा कौन है वॉशरूम में जिसके लिए तुम यहाँ एक बॉडीगार्ड की तरह खड़े होकर इंतजार कर रहे हो? अभिमन्यु ने अवंतिका की बात सुनकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे अवंतिका की बातों से गुस्सा आ रहा था लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसने अवंतिका को जवाब देते हुए कहा, हाँ ये समझ लो कि कोई इतना स्पेशल है जिसके लिए हम कुछ भी बन सकते हैं, चाहे बॉडीगार्ड या सिक्योरिटी गार्ड, जो भी तुम्हारा मन हो, लेकिन मुझसे दूर रहो। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई अनजान लड़की मुझे इस तरह टच करे और मेरे इतने करीब आए, इसलिए अपनी हद में रहो।
अभिमन्यु का ये जवाब सुनकर अवंतिका बहुत बुरी तरह से चिढ़ गई लेकिन फिर भी बोली, अच्छा मजाक कर लेते हो तुम, अनजान और मैं, तुम्हें भी पता है मेरे इस खूबसूरत चेहरे को तुम कभी भूल नहीं सकते, और मुझे पता है आज भी मैं ही तुम्हारे सपनों में आती हूँ। मुझे सामने देखकर तुम्हें वो सब कुछ याद आ गया होगा जो पल हमने साथ बिताए थे, क्योंकि अवंतिका से तो कोई मूव ऑन हो ही नहीं सकता कभी, तुम भी नहीं अभिमन्यु। इतना बोलते हुए वो दोबारा से उसके नज़दीक आने लगी और अभिमन्यु कुछ कदम पीछे हुआ। अवंतिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो सिडक्टिव अंदाज में मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी और उसने दोबारा अपना हाथ ऊपर उठाया। अपने हाथ की एक उंगली से वो अभिमन्यु के गालों को टच करने ही वाली थी कि अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ा और पीछे की तरफ झटकते हुए गुस्से में बोला, दूर रहो हमसे, हमने कहा ना, तुम्हें कम सुनाई देता है क्या, और जाओ यहाँ से। हमारे लिए तुम सिर्फ एक अनजान लड़की हो और इसके अलावा कुछ भी नहीं, समझ जाओ इस बात को। अवंतिका उसके ऐसा करने पर खिसिया गई लेकिन फिर भी उस खिसियाहट को अपनी मुस्कुराहट के नीचे छुपाते हुए बोली, हाँ जैसे तुमने बोल दिया और मैंने मान लिया। मत मानो, तुम्हारी मर्जी, अभिमन्यु गुस्से में उसे दूर जाते हुए बोला। लेकिन अवंतिका उसके पीछे आते हुए बोली, अरे लेकिन मेरी इस बात का जवाब तो दो, ऐसे बॉडीगार्ड बनकर यहाँ किसका इंतजार कर रहे थे, और अब उसका इंतजार नहीं है क्या तुम्हें? इतना बोलकर अवंतिका फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए हंसी। अभिमन्यु को उस पर गुस्सा आ रहा था लेकिन इप्सिता के बारे में सोचकर वो वहीं रुक गया। क्रमशः आखिर क्या इरादे हैं अवंतिका के, क्या करना चाहती है वो, क्यों वापस आ रही है अभिमन्यु की जिंदगी में, और क्या उसे पता चलेगा इप्सिता और अभिमन्यु की सगाई के बारे में? आखिर क्यों छोड़ा था अवंतिका ने अभिमन्यु को? क्या लगता है आप लोगों को, बताइए कॉमेंट में।